नमस्कार। विंग कमांडर आलोक सहाय का सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज मैं अपने कारगिल युद्ध के अनुभव की दूसरी कड़ी आपके साथ साझा करने आया हूं। जो प्रथम कड़ी थी उसमें मैंने बताया था कि कैसे कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी और कैसे हमने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए थे। और आपको पता होगा कि मैं श्रीनगर हवाई अड्डे से एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जिम्मा संभाल रखा था और जितने भी स्ट्राइक्स आते थे कारगिल युद्ध के दौरान वो हमारे कंट्रोल से ही होकर के जाते थे और आते थे। तो युद्ध की जो शुरुआत हुई थी उसमें एक बहुत ही कुछ और रोचक घटनाएं हैं जिसको मैं साझा करना चाहता हूं आज।
विंग कमांडर आलोक सहाय जो 26 साल तक वायु सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, सार्जेंट के पद पर 1988 में इन्होंने वायु सेना ज्वाइन की थी। अपने इस काल के दौरान इनको कारगिल युद्ध का विशेष अनुभव प्राप्त है। कारगिल मेडल से सम्मानित विंग कमांडर आलोक सहाय इन दिनों अपोलो बिलासपुर में सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहे हैं और आज कारगिल युद्ध के दौरान के अपने कुछ अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं।
पहले दिन की जो रोचक घटना थी कि कैसे एक गुप्त विमान से एयर चीफ मार्शल टिपनिस वहां श्रीनगर पे लैंड किए थे और कैसे ये निर्णय हुआ कि हम सुबह में लॉन्च करने जा रहे हैं और कैसे कैसे लॉन्च हुआ, ये मैं आपसे पहले ही साझा कर चुका हूं। तो आज मैं विशेष रूप से आपको बताने वाला हूं वो घटना जो तीसरे दिन युद्ध की हुई थी। 27 मई का दिन था 1999, जब पहले से स्ट्राइक शुरू हो चुकी थी। तो 27 मई का दिन एक अनोखी घटना हुई। करीब 10:30 बजे के आसपास हमारा जो अवंतीपुर फॉर्मेशन गया था उसमें एक MiG-29 एक जहाज के पायलट ने एक जेट एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान से भारत की तरफ इंटर करते हुए देखा तो उसके कान खड़े हुए। उसने तुरंत ही डिक्लेयर किया, हमारे फ्रीक्वेंसी पे आया और मैं उस समय आरटी पे था, तो उसने बोला श्री श्री कोबरा 1 जेट एस्कॉर्टेड बाई 2 मिराजेस एंटरिंग LOC Heading towards us। तो मैंने तुरंत अपना जो बैडो है, बेस एयर डिफेंस ऑफिसर होते हैं जो उस पूरे सेक्टर के स्ट्राइक्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको तुरंत मैंने हॉटलाइन पे मैसेज दे दिया कि ऐसी सूचना आई है कि एक जेट पाकिस्तान से हमारे तरफ बढ़ रहा है। तो इसकी आशंका हम लोगों को थी, हम पहले से ही तैयार थे कि हमने जो एयर स्ट्राइक लॉन्च की है उससे कभी भी पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है और फुल स्केल एयर स्ट्राइक पाकिस्तान भी हमारे ऊपर स्टार्ट कर सकता है और जिससे पूरे युद्ध की घोषणा हो जाएगी। तो हम सभी तैयार थे इसके लिए कि ऐसा कभी भी हो सकता है। तो हमें अब निश्चित तौर से लगा क्योंकि आजकल के आधुनिक वार में सबसे पहले एक रिकनेसा जहाज जाता है जो जैमर जाता है, वो जेट एयरक्राफ्ट नॉर्मली होते हैं, उसमें बहुत ही आधुनिक तरह के इक्विपमेंट लगे होते हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्रों के जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जितने भी इक्विपमेंट हैं उसको वो जाम कर देंगे ताकि आपका एयर डिफेंस रडार जाम हो जाए, आपकी रेडियो ट्रांसमिशन जाम हो जाए और उस जैमर को, चूंकि वो लड़ाकू जहाज नहीं होता है, उसको स्कॉर्ट करते हैं फाइटर्स। तो हमने ये समझा कि लगता है पाकिस्तान ने जैमर भेजा है और पीछे सब पूरा एयर स्ट्राइक उनकी भी लॉन्च होगी और अब एक पूरे युद्ध की शुरुआत होगी दोनों तरफ से। तो हम तुरंत तैयार हो गए, हमने अपना आरटी सेट भी बल्कि पोर्टेबल आरटी सेट उठा लिया ऐसे समय में, और सामने ट्रेंच होता है तो हम ट्रेंच के अंदर चले जाते हैं ताकि अगर ऊपर से बॉम्ब गिरे तो उससे हमारा नुकसान ना हो पाए, क्योंकि ATC को बचा करके रखना बहुत ही आवश्यक होता है युद्ध के समय में। लेकिन अब वो कोबरा वन चिल्ला रहा था कि श्री रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस, आई हैव इन हिम इन ऑन साइट। तो मैंने बैडो से पूछा कि सर ही इज आस्किंग रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस, मतलब उसको मारने की वो अनुमति मांग रहा था कि शूट करे या ना करे। तो बैडो ने बोला कि आस्क हिम टू होल्ड मेंटेन सेफ डिस्टेंस एंड फॉलो हिम। तो मैंने रिले कर दिया उसको, कोबरा वन को। कोबरा वन पीछे पीछे उसके सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके उसको फॉलो कर रहा था और उतावला था उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च करने के लिए। फिर उसने चिल्ला करके कहा कि ही इज टर्निंग राइट हेडिंग टुवर्ड्स श्रीनगर नाउ, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने बैडो को कहा सर ही इज टर्निंग राइट हेडिंग टुवर्ड्स ओवर एट श्रीनगर। तो बैडो ने कहा कि होल्ड, आस्क हिम टू होल्ड बट मेंटेन सेफ डिस्टेंस एंड फॉलो हिम। देन बैडो ने मेरे को बोला लाइन पे कि आस्क हिम टू गो क्लोज टू द एयरक्राफ्ट मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस एंड ट्राई टू चेक इफ देर इज एनी मार्किंग ऑन द एयरक्राफ्ट। क्या होता है कि जहाजों पे मार्किंग होती है जिससे ये पता चलता है कि वो किस देश के जहाज हैं। तो मैंने ये रिले कर दिया फाइटर को, अपना MiG-29 था वो, थोड़ा समय लिया उसने कुछ सेकंडों का, वो थोड़ा क्लोज जाकर के उसने देखा और उसने रिले किया कि सर निगेटिव, देर इज नो मार्किंग ऑन द एयरक्राफ्ट। लगभग हम ये निश्चिंत हो गए कि लगता है कि पाकिस्तान ने सारे मार्किंग्स हटा करके इन्होंने अटैक लॉन्च किया है। काफी उत्तेजना थी, चारों बगल चहल पहल हो गई। बमबारी से बचने के लिए जो उपाय होते हैं वो उपाय हमने तुरंत कर लिए। मैं भी ट्रेंच में जा चुका था और हम सभी ऊपर देख रहे थे कि अब लगता है बॉम्ब गिरेगा। लेकिन बैडो जो थे हमारे, जो उस एरिया के सेक्टर कमांडर थे जो पूरा स्ट्राइक कंट्रोल करते हैं, उन्होंने बार बार कहा कि अभी स्ट्राइक नहीं करने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए। और धीरे धीरे वो जहाज उसको फॉलो करते हुए बनिहाल पास के पार चला गया। तब यह एहसास हुआ कि अब हमारा ये फाइटर, इसके पास इतना फ्यूल नहीं बचा होगा कि वे वापस आकर के अपने पेरेंट बेस जो अवंतीपुर था वहां लैंड कर सके। तो तुरंत मैसेज भेज दिया गया कि इस फाइटर को अब दूसरे जगह लैंड कराना पड़ेगा अक्रॉस बनिहाल पास, जो कि कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो हमारे ही जासूसी जहाज था और हमारे ही मिराज थे। हमने अपने मार्किंग्स को ऑब्लिटरेट करके हम जा करके उनका रेकी हम करने गए थे। ये चूंकि बहुत ही सीक्रेट मिशन था, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास थी, लेकिन बैडो के पास इसकी सूचना तुरंत ही आ गई और इसीलिए उन्होंने उस फाइटर जहाज को होल्ड करने के लिए बोला। लेकिन फिर भी वो निश्चित नहीं थे कि यह हमारा ही जहाज है या कहीं सचमुच में पाकिस्तानी भी तो नहीं आ गए, तो इसलिए उन्होंने फायर को होल्ड करवाया और काफी अच्छा हुआ वो एपिसोड करीब आधे घंटे में अंदर सब खत्म हो गया। तो ये 27 मई को करीब 10:30-11 के बीच की घटना है और उसी के करीब 1-2 घंटे बाद ये नचिकेता की घटना हुई, जो मैं पिछले अपने एपिसोड में मैंने वर्णन किया है कि स्ट्राइक करते समय जब डाइव अटैक होता है, MiG-27 डाइव अटैक करते थे और उनको MiG-21 से ऊपर से स्कॉट करते थे, क्योंकि MiG-27 जो होता है वो ग्राउंड अटैक वर्जन फाइटर है लेकिन ये एयर टू एयर कॉम्बैट में कमजोर थोड़ा पड़ता है। इसके लिए इसको स्कॉट करने के लिए, मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि बाहरी दुश्मन का कोई जहाज इसके ऊपर झपट्टा न मारे, इसके लिए MiG-21 तैयार रहते हैं, इसके ऊपर में मडराते रहते हैं। उसको हम बोलते हैं कैप, कॉम्बैट एयर पेट्रोल। तो MiG-21 कैप करते थे और नीचे MiG-27 से स्ट्राइक करते थे और बाद में ये चले आते थे। 16 जहाज का एक पैकेज होता था, मैंने पिछले एपिसोड में बताया है। तो इसी स्ट्राइक के दौरान क्या हुआ कि जब नचिकेता अपने MiG-27 से डाइव अटैक कर रहे थे, तो डाइव करने के बाद जब उन्होंने बॉम्ब्स रिलीज किए और जब उन्होंने पुल अप किया, तो उस पुल अप में उनका इंजन फेलियर हो गया और उनको इजेक्ट करना पड़ा। तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। तो हंगामा हुआ कि उन्होंने तुरंत मेरे को ट्रांसमिट किया कि श्री श्री हाइना वन इजेक्टेड, इस कॉल साइन वाज हाइना वन इजेक्टेड अप्रॉक्सिमेट कोऑर्डिनेट सो एंड सो। तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है हमने तुरंत वो की, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है हमारे, हेलीकॉप्टर लॉन्च किया जाता है और उसकी खोज के लिए और उसको रेस्क्यू करके लाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो जहां इजेक्ट करके गिरे थे, उतरे थे, वहां पे वो पाकिस्तानियों ने उस एरिया में अपना कंट्रोल कर रखा था पहाड़ी चोटियों पे, तो वो उनके कब्जे में आ गए। लेकिन इस दौरान हुआ क्या कि नचिकेता जब उनका इजेक्शन हुआ और जमीन पर गिरे, तो उस फॉर्मेशन में जो बाकी 15 जहाज थे वो नचिकेता को कवर देने लगे, अपना टारगेट छोड़ करके। कवर देने का मतलब ये कि जहां वो नचिकेता गिरा है उसके चारों बगल अब इन्होंने बॉम्ब्स और फायरिंग स्टार्ट की, ताकि जो दिखाई दे रहा था कि जो पाकिस्तानी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मिले नचिकेता अपने आप को छुपा ले या भाग सके।
आलोक जी, मैंने सुना है कि मिराजेस का कारगिल युद्ध में कुछ विशेष योगदान था इस युद्ध की फतेह में, वो क्या एपिसोड था?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मिराज का बहुत अच्छा योगदान रहा है। हुआ ये था कि जब हमने एयर स्ट्राइक लॉन्च किया, तो चूंकि पाकिस्तानी रेंजर्स पहाड़ की चोटियों पर बैठे हुए थे और वो वहां पे बंकर्स होते हैं, बंकर्स चट्टानों के अंदर बनाए हुए होते हैं, तो जब हम ऊपर से बमबारी हमारे एयर स्ट्राइक जब की जा रही थी, तो अगर आपके बंकर से 2-4 मीटर भी अलग अगर ये बॉम्ब गिरेगा, तो चट्टान जो होते हैं वो एक तरह से शील्ड का काम करते हैं। अगर वो चट्टान के अंदर गुफा है तो बगल में भी बॉम्ब गिरेगा तो उसकी जो चट्टाने हैं बगल की वो शील्ड का काम करती हैं और उससे नुकसान उनको नहीं हो रहा था। तब ये हमें एहसास हुआ कि हमें बिल्कुल ही एक प्रिसीजन बॉम्ब्स की जरूरत है, या तो लेजर गाइडेड बॉम्ब हो जो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनके ऊपर अटैक कर सके ताकि हम उनको मार सकें। तो ये हमारे पास उस समय में लेजर गाइडेड बॉम्ब्स नहीं थे, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स नहीं थे। तो फिर ऐसे समय में हमारे दोस्त एक देश ने, अब तो सब जान ही गए हैं, मैं इसको साझा भी कर सकता हूँ कि इसराइल ने हमें इस गाढ़े समय में बहुत ही अच्छे ढंग से मदद की थी। और रातों रात हमने वहां से एक मंगाए, लेजर पॉट्स और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स आए। और अपने जो मिराज का जो बेस है, मैं उसको साझा नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर, चूंकि वो अभी भी सीक्रेट है। वहां पर रातों रात उनमें मॉडिफिकेशंस किया गया मिराजेज में, क्योंकि उस समय सिर्फ मिराज ही एक ऐसा जहाज था हमारे पास जिसको मॉडिफाई करके उससे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स दागे जा सकते थे। तो मिराज का चयन हुआ, और उसके बाद रातों रात इस बदलाव के बाद जब मिराजेज लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स के साथ एयरबॉर्न हुए, तो फिर उन्होंने कोहराम मचा दिया, क्योंकि इन बमों की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही सटीक होती है। मैं बताना चाहूंगा कि वर्स्ट वेदर कंडीशंस में इनका टारगेट से डिविएशन सिर्फ 1 मीटर का होता है। जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे, जो उनके मेन सप्लाई लाइन्स थे, या जो बड़े बड़े सेंटर्स थे इनके, इनका जो एमुनिशन डिपो था बड़ा बड़ा जो बैक साइड में इन्होंने रखा था, उस पर हमने प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब से मिराजेस से तहलका मचाया और उनकी रीढ़ टूट गई उसके बाद से। तो मिराज का निश्चित रूप से बहुत ही अहम योगदान है कारगिल युद्ध में।
विंग कमांडर आलोक सहाय ने आज हमारे साथ अर्पा रेडियो पर साझा की कारगिल युद्ध से कुछ और बातें। इसका पहले एपिसोड में इन्होंने हमको बहुत सारी नई जानकारियां दी थी, और आज इस दूसरे एपिसोड के माध्यम से आप लोग इस युद्ध के और भी बहुत करीब पहुंच गए होंगे। इस सारी जानकारी के लिए आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद संज्ञा जी। फिर मैंने पिछले एपिसोड में भी किया है, वो 27 मई का दिन मैं कभी भूलता नहीं हूँ। इतने बड़े एपिसोड्स हुए, सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी जो जेट का हंगामा हुआ कि पाकिस्तानी जेट आ रहा है, जैमर आ रहा है मिराजेस के साथ अटैक करने, और दूसरा उसके बाद स्क्वाड्रन लाइट लेफ्ट नचिकेता का इजेक्शन जो हुआ, और उसके बाद फिर स्क्वाड्रन आहूजा गए तो वो वीर गति को प्राप्त हुए, उनको मिजाइल लग गया। वो काफी इवेंटफुल डे था हमारे लिए, और अब मेरे जीवन का एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। इसके साथ साथ कारगिल युद्ध के दौरान मैंने देखा कि आप जितना भी प्रयास करो, जितना भी प्रैक्टिस करो, जब वास्तविक युद्ध होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसका अनुभव बिल्कुल ही अनोखा होता है। और इसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मुझे ये सब देखने को मिला, और एक सेंट्रल रोल में मैंने ये सब चीज देखा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी।